ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद, 27वां अध्याय, श्लोक संख्या 7। दुहित्रु दशोत्तर शतम् पितृमातृ यशस्करिहि शीलो दार्ज्य गुणोपेतः ओरञ्जन्यः प्रजापते। दुहित्रु दशोत्तर शतम् पितृमातृ यशस्करिहि शीलो दार्ज्य गुणोपेतः ओरञ्जन्यः प्रजापते। दुहितृ दशोत्तर शतम् पितृमातृ यशस्करिहि शीलो दार्ज्य गुणोपेतः ओरञ्जन्यः प्रजापते। शब्दार्थ, दुहित्र कन्याएं, दशोत्तर दस अधिक, शतम 100, पितृ पिता, मातृ माता, जशस्करी जशस्वी, शील उत्तम आचरण, औदार्ज्य उदारता, गुण गुण, उपेतः युक्तः, पौरंजन्यः पुरंजन की कन्याएं, प्रजापते हे प्रजापति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे प्रजापति, राजा प्राचीन बरहिषित, इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। तात्पर्य आगे जागा है बहुत, अब आगे आ सकते हैं, पीछे पीछे क्यों बैठते हैं, कम फरवाड। तात्पर्य, शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानों माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाले होते हैं, किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्ण संकर हो जाती हैं। वर्ण संकर संतान अपने परिवार कुल यहाँ तक कि अपने प्रति भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में गर्भधान संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक रखी जाती थी। इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरंजन के अनेक संतान पाते हैं, किंतु वे वर्ण संकर नहीं थी, वे सब की सब उत्तम आचरण वाली संतानें थी और उनमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानों उत्पन्न कर ले, किंतु संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे की गई हमारी आकांक्षा पाप पूर्ण तो है ही, किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म देता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद उसे संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी तथा गोस्वामी है, जिसका अर्थ है कि भोग से सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यास नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं को पूरी तरह से रोक सकेगा। निसंदेह राजा प्रोंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था, जैसा वहाँ वर्णित है। उसके 1100 पुत्र तथा 110 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र तथा पुत्रियाँ उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियाँ की संख्या पुत्रों से कम थी, इससे ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखमय था। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तवृंद और मातृवृंद को विशेष स्वागत है संस्था की तरफ से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो प्रसंग पुरंजन उपाख्यान जो लगभग 4 अध्याय में नारद जी ने बताते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि इस संसार में कई प्रकार के लोगों तो हैं संसार आसक्त, लेकिन उनमें से जो सत्गुण वृत्ति में सकाम कर्म में विशेष करके पुण्य कर्म यज्ञादि कर्म में जो आसक्त हो करके संसार भोग करते हैं और उसी को ही जीवन के परम पुरुषार्थ मानते हैं, उन्हीं को परिवर्तन करके भक्ति में भक्ति की श्रेष्ठता दिखा करके भक्ति में लाने के लिए ये प्रयास है। राजा प्रचिन बरहिषत बहुत बड़े यज्ञकर्ता थे, तो नारद जी ने उनको किस प्रकार समझाते हैं ये कहानी के द्वारा। ये पुरंजन और पुरंजनी जो पति पत्नी का रूप में बताया गया, ये पुरंजन इस नगर के स्वामी मतलब इस देही है, ये जीवात्मा है, और पुरंजनी उसके बुद्धि है। कभी कभी व्यक्ति भोग में आसक्त होकर के बुद्धि का सहारा नहीं लेता है, भोग में तुरंत लग जाता है असत्संग करके, और फिर नाना प्रकार के तमगुणी कार्य में लग जाता है, बाद में पश्चाताप होता है उसको। पश्चाताप करके बोलते अरे मैं गड़बड़ कर दिया, फिर बुद्धि के सहारा लेता है। ये ठीक इसी प्रकार 25वां अध्याय में जो बताया गया था, पुरंजन ने चला गया शिकार करने, बहुत सारे पशु को हत्या किया, जो भी किया पत्नी को बिना पूछे चला गया था, और आ करके फिर पश्चाताप करके अपने पत्नी को बहुत प्रशंसा किया, उनके संग किया। तो जो रजोगुणी बुद्धि, भोग प्रवृत्ति बुद्धि, सद्बुद्धि, अगर जीवात्मा सद्बुद्धि का घनिष्ठ संग करे तो उनके परिणाम उत्पन्न होगा। जीवात्मा बुद्धि का साथ लेने से उसका परिणाम होगा विवेक, है ना। बिना सत्संग विवेक ना होए। विवेक तभी जागृत होता है जब जीवात्मा सत्संग करता है, असंग करने से तो विवेक नहीं होगा, विवेक होगा। तो विवेक आदि अनेक ये सारे जो परिणाम है जीवात्मा ने, चैतन्य जीव ने जड़ बुद्धि के सहायता से उत्पन्न किया, ये सारे उनके पुत्र कोटि के हैं। ये सारे विवेक आदि उनके पुत्र हैं। जो 1100 विवेक आदि धर्म, ये सब सद्बुद्धि का वृत्ति स्वरूप है। बुद्धि का वृत्ति अनेक होता है। जो वृत्तियां पुरुष कोटि के हैं उनको पुरुष माना गया, जो स्त्री कोटि के हैं उनको स्त्री माना गया। बोले इसे कैसे? हाँ, कुछ ऐसे वृत्तियां हैं, धार्मिक वृत्तियां, जिनको स्त्री आख्या दिया गया। जैसे भगवान ने गीता में कहते हैं, कीर्ति श्री ब्राक्ष नारीणाम श्रुतिर मेधा धृतिर क्षमा, है ना, 10वां अध्याय बोलते हैं। ये सब स्त्री क्वालिटीज है। ये जो क्वालिटी साथ हैं ये सब स्त्री पदवाच्य है। कीर्ति श्री ब्राक्ष नारीणाम श्रुति मेधा धृतिर क्षमा आदि आदि, लज्जा उत्कंठा दया इत्यादि इत्यादि, ये जब गुण है ये सब कन्या है, ये सब स्त्री गुण है। इसलिए उनको ये सब सद्गुण के जो उत्कृष्ट वृत्ति स्वरूप जो कन्याएं हैं, लज्जा आदि उत्कंठा आदि क्षमा आदि, उनको दुहिता कहा गया। और ये दुहिता बोलते हैं कि 110 हुए, पुत्रों की संख्या से कन्या की संख्या कम है। अगर किसी भी गृहस्थ के घर में, सभी गृहस्थ चाहते हैं उनके पुत्र कन्या हो, अगर कन्या की संख्या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा क्या, एक होने से ही रोते हैं आजकल तो, अगर ज़्यादा हो गया तो बाप रे बाप। तो पुत्र की संख्या ज़्यादा हो, कन्या की संख्या कम हो, इसलिए संसार सुखमय माना जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे लगता है कि पुरंजन का गृहस्थ आश्रम बड़े सुखमय था, क्योंकि पुत्र थे कितने उनके, 1100, और कन्या थे 110। तो 10% कम थे तो इसलिए अच्छा है, 1/10 रेशियो अच्छा होता है। लेकिन कोई 10 पुत्र करें तो एक कन्या 10 पुत्र मर जाए तो वो आजकल तो सरकार के तरफ से ही बताया जाता है, क्या दो और दो, हम दो हमारे दो, ऐसे कुछ बोलना, हम दो हमारे दो, वो दो से ज्यादा बढ़ते ही नहीं। लेकिन बढ़ते नहीं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि संग सुख प्राप्त करना नहीं चाहते, इंद्रिय भोग नहीं चाहते, चाहते हैं लेकिन पुत्र नहीं चाहते। इसी को प्रभुपाद जी ने बोलते हैं ये पाप कर्म है। नहीं, पुत्रार्थे क्रियते भार्यः, धर्म के नियम के अनुसार उत्पन्न किया गए संतानें ठीक धर्म के अनुसार अपने माता पिता के गुण को लेकर आते हैं। अगर अधर्म, भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भारतर्षभ, जो धर्म के अविरुद्ध है, मतलब धर्म के अनुसार है, जो प्राणी धर्म के अनुसार काम इच्छा, वो तो भगवान को तो मैं ही हूँ। काम इच्छा कोई दूसरा चीज नहीं है, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते काम अस्मि, मैं ही हूँ, लेकिन अधर्म काम नहीं है। धर्म अविरुद्ध, धर्म को विरुद्ध ना करने वाला, मतलब धर्म के साथ धार्मिक क्रिया के अनुसार जो काम भोग है वो तो भगवान बोलते मैं हूं, इसमें संतान आवश्यकता है, संतान संतति। लेकिन केवल धर्म के अनुसार करो तो सही है, लेकिन कितने भी संतान करने के बाद आप तृप्ति हो जाना चाहिए, और फिर संतान बंद कर दो और तृप्ति चालू रखो, बोलते हैं पाप कर्म है। किसी भी प्रकार इंद्रिय को ज्यादा भोगने से, कोई भी इंद्रिय को, वो पाप है, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार यहां जैसे प्रसंग में कहा गया है कि उन्होंने अपने पुरंजनी रूपी महिषी अपने रानी के साथ बड़े तल्लीन होकर के भोग में लग गया और उनको पता ना चला। सचमुच ऐसे संसार में देखा जाता है, अगर सुख के काम में हम लग जाते ना, सुख के भोग में लग जाते हैं तो समय ऐसे बीत जाता, बोलते हो इतनी जल्दी, समय के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, विषय भोग में लग जाते हैं, समय को कौन देखता है, दिन रात कैसे बीते, महीना दिन कैसे बीते पता ना चले। पुरंजन को 50 साल बीत गया, वार्धक्य आ गया, अब पता ना चले, बोले ओ क्या हो गया। अगर वही अगर दुख भगने का समय आए, जुगा इतंग निमिषेण, अरे इतने ठंड में क्या खत्म ही नहीं होता टाइम, दुख के समय तो बीते तो बीतता ही नहीं, एक निमिष भी जुग की तरह लगता है। तो इसलिए सुख के समय जस्ट उल्टा, जुगा इतंग निमिषेण, एक जुग भर के सुख भोग लो, बोलते क्या है अभी तो थोड़ा ही होगा, यही लगता नहीं। तो इस प्रकार देखते देखते इस इंद्रिय सुख का समय ऐसे ही बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। इस अध्याय में केवल यही बताया गया कि कोई व्यक्ति भले ही सद बुद्धि जात विवेक आदि लज्जा क्षमा आदि सद्गुण के वृत्ति स्वरूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करके उसमें लग जाए, इसी पुण्य कर्म आदि में लग जाए, फिर भी उसका पतन है, कुछ नहीं होगा। तो उससे कैसे बचना है, क्योंकि इससे कितने भी धार्मिक कृत्य करे जो जरा और व्याधि से बच सकता क्या, ये तो आएगा ना, हाय हाय करता रहेगा, अब क्या करूं, मैं इतने पुण्य किया, इतने धर्म कर्म क्रिया, अरे बूढ़ा तो होना ही है, व्याधि तो होना ही है, और बाकी आगे तो अपेक्षा करते रहते हैं, इससे छूट नहीं पा सकता। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन जो सारा सर्वस्व है, समस्त शरीर में सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, इसको पा करके जब उसी का समाधान नहीं कर पाए, जरा व्याधि जन्म मृत्यु का अगर समाधान नहीं कर पाए तब तो बेकार चला गया। तो उसी के समाधान कैसे होगा, ये धर्म अर्थ काम मुख्य से नहीं नहीं नहीं। श्री चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि अज्ञान तम धर्म कहिए कैतव, कैतव मतलब चिटिंग प्रपंच, ठगा गए क्या है, बोलते अज्ञान और तमगुण के जो धर्म है वही सब कैतव है, वो क्या है, बोलते धर्म अर्थ काम वांछा आदि जत सब, धर्म के आशा करना, अर्थ के आशा करना, काम भोग की आशा करना, ये आदि आदि सब, ये सब कैतव की कैटागोरी में आते हैं। उनमें से बोलते तारा मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, माय गॉड, ये धर्म अर्थ काम तो फिर भी छोटे मोटे हैं, जो मुक्ति की वांछा मुख्य वांछा, कौन नहीं चाहता है मुख्य प्राप्त करना, मुक्ति के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। वो शास्त्र कहता है तारा मध्य मतलब धर्म अर्थ काम को चार पुरुषार्थ में, वो तो तीन ही तो चलो छोटे मोटे हैं, जो मुक्ति के वांछा है, मुक्ति आशा है, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिटिंग प्रोपेंसिटी का, क्यों न जहां हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, जिनके कारण कृष्ण भक्ति तो खत्म, अंतर्धानी हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। हाँ, कितने हाई अलर्ट दिया गया ये मुक्ति के आशा को, और वही मुक्ति के लिए ही नाना प्रकार के पुण्य कर्म जाग्ञ यज्ञ आदि हम करते हैं, सुख भोग स्वर्ग सुख आदि के लिए जो करते हैं उसी में लग जाते। एक्चुअली संसार में कुछ लोग तो इसी को जीवन की सफलता मानते हैं, सबसे बड़े पुरुषार्थ मानते हैं, मैं तो स्वयं कमा के दमा करके बहुत बढ़िया दान धर्म किया, बहुत नाम कमाया, बहुत लोक कल्याण करी काम किया, इतने सब किया, ये बहुत नाम जस कमाया, और धर्म के नियम के अनुसार विवाह करके अनेक संतान पुत्र कन्या उत्पन्न किया, जो धर्म के अनुसार करते हैं जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके पुत्र कन्या भी ठीक उन्हीं की तरह ही होंगे, वो भी पुण्य कर्म के धारण करेंगे, है ना, नहीं वो भी सत्वृत्ति लाएंगे, और ला करके उन लोग भी कोई ऐसे बड़े फैमिली है बोलते हैं कि मैं 8 बेटे हुए 4 बेटी जो भी हुए उन सब क्या ना, एक डॉक्टर इंजीनियर एक प्रोफेसर ये वो बेटी भी सब ऐसे ऐसे हैं, एक सिंगर एक क्या क्या जो सब बड़े बड़े पद पद में है, तो आपने को इतने गौरवान्वित मानता है, इतने जशस्वी मानता है, इतने समर्थ मानता है, सफल काम मानता है कि वो तो मैं तो जीवन मेरा बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्शन का ऊपरी लाइन में मैं हूँ, क्योंकि सारे मेरे ऐसे 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 कर चुके हैं, हाँ अब मैं ये सब किया हूँ, ये सब किए हैं। और नाती पोता भी उनके भी इसी काम में लगे, वो कोचिंग कर रहे हैं, वो भी IIT में सिलेक्ट हो जाएंगे लगते हैं। तो इसी को तो मानते हैं जीवन परमार्थ प्राप्त कर लिया, लेकिन इसी को भागवत आदि में नारद आदि महर्षिगण कहते हैं कि नहीं, ये तो ठग गया, भली प्रकार से चिटिंग हो गया आपके साथ। सचमुच संसार में 99% लोग इसी को मान लेते हैं, उसी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति को लोग पुण्य कर्म के साथ तुलना कर लेते हैं। हाँ भगवान की पूजा करेंगे, हाँ यज्ञा करेंगे, वासुदेव के विग्रह रख करके बड़े भली प्रकार श्रृंगार करके 108 उपचार से इतने आइटम लगा करके मंत्र तंत्र जंत्र पुरोहित बुला कर कराएंगे, बोले भक्ति तो है। इसी को दिखाने के लिए श्री सनातन गोस्वामी बृहद्भागवत अमृत में जो नारद जी ने सर्च शुरू किए, कृष्ण कृपा के पात्र कौन है उनको ढूंढने के लिए निकले, सबसे पहले इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र में एक ब्राह्मण ने जो पूजा किया, जो फिस्ट खिलाया, ओ माय गॉड, बोले बाप रे बाप, पूरे कृपा के पात्र तो वही है। उनके पास बोले अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके पास ओ उनके ट्रैवलिंग जो है कृष्ण कृपा के पात्र के अन्वेषण है, बहुत कुछ शिक्षा मिलता है उसमें कि कृष्ण कृपा ऐसा नहीं। सचमुच हम लोग सभी लोग बहुत प्रकार के भक्ति के संघ में आकर, भक्तों के संग में रह करके, भक्त के भेष रूप लक्षण को प्राप्त करके भी भक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, ठग जाते हैं। भक्ति को पहचानने के लिए जो मीटर भगवान की शिक्षा से प्रशिक्षित होकर रूप गोस्वामी ने बड़े संक्षिप्त रूप से बिल्कुल परफेक्ट दो लाइन उसका पहचान बता दिए। एक भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, न केवल कृष्णानुशीलनम, केवल कृष्ण के ही बारंबार कृष्ण प्रसन्नता के लिए चेष्टा करना, फिर अनुकूलेना, अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम, यही भक्ति है, यही उत्तम भक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। किसी की भी अन्य देव पूजा के अन्य प्रकार की जाति पूजा, अहंग पूजा, वो पूजा, जो भी कुछ कर लो, कुछ भक्ति नहीं हो सकता, केवल केवल मात्र अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम, यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति यही है, बाकी कुछ भक्ति नहीं है। कृष्ण के लिए कर्म किया बिना कोई भक्ति हो ही नहीं सकता। बोले मैं माँ बाप के भक्त हूँ, वो इंद्र के भक्त हूँ, उनके भक्त हूँ, ये भक्त हूँ, वो भक्त भक्त कुछ नहीं है। तू अपने को मान ले भले, कोई नहीं मानेगा, वो भी नहीं मानेंगे जिससे भक्ति, ना भक्ति थोड़ी उसको कहते। भक्ति तो कृष्णानुशीलनम, कृष्ण कर्म के बिना भक्ति हो ही नहीं सकता, वो तो भक्ति इसी को कहते हैं। तो फिर भक्ति क्या नहीं है, बोलते हैं अन्य अभिलाषा शून्य, कोई प्रकार के आशा रखना भक्ति के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा जावतीय प्रकार की इच्छा, यहां तक कि ज्ञान की इच्छा, कर्म की इच्छा भी ये भक्ति को टिके नहीं है। इसलिए तटस्थ लक्षण में सबसे पहले नाम में बयान कर दिए उसको, अन्य अभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये सब नहीं है। तो क्या है, न अनुकूल भाव से कृष्ण के अनुशीलन करना, यही है भक्ति। तो इसी मीटर को हर कार्य में, हर सेवा में, हर भावना में चेक करके देखना चाहिए कि हे भक्ति है या नहीं, तब पता चलेगा हम मुड़ मुड़ाए माला पकड़ाए क्या क्या कर रहे हैं, है ना। नहीं तो इसी को बड़े कहानी के द्वारा जो उच्च कोटि के आचार्य गण होते हैं उनको पता है कैसे कैसे जीव को फंसाना है, तो इसलिए प्राचीन वर्षी को वो इसी कोटि के थे, इस कहानी को बोल करके उनको समझा दिया। हम लोग तो तात्पर्य के साथ फिर उसके ऊपर और व्याख्या करके भी मूड कोई समझ नहीं पाते ना, कुछ कर पाते पढ़कर। तो हमारे लिए ऐसा नहीं, हमारे लिए तो ठोक ठोक कुछ और बोलना चाहिए। ये प्राचीन परिषद के लिए नारद जी ने बोले थे, इस प्रकार कहानी से उनको समझा दिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सीधा सीधा बोलते हैं कि ये जो अनेक प्रकार के संतान जैसे बताया गया उत्तम कोटि के, ये श्लोक में बताया गया शील औदार्य गुण आदि से, इस जसस करी पितृ मातृ जसस करी, पिता माता के नाम को रोशन किए उनके संतान। अब ये आजकल अब क्या कहें, रोशन करते क्या करते हैं, ये सब अब बोलना नहीं चाहिए, अब सभी जानते हैं, अभिज्ञा सभी है। अब पितृ मातृ जसस करी, क्योंकि धर्म के अनुसार जो संतान उत्पन्न हुए हैं धर्म के नियम के अनुसार वो निश्चित जस फैलाएंगे माता पिता का। लेकिन आजकल तो धर्म क्या जानते नहीं, धर्म व्हाट इज दिस, धर्म अधर्म को ही धर्म मान लेके, धर्म जानते ही नहीं क्या होता है, धर्म के अनुसार क्या पालन करेंगे, धार्मिक कृत्य से भूल चुके हैं। हाँ वो हमारा पूरे पृथ्वी वर्ष पृथ्वी रूप में भारत वर्ष श्रेष्ठ है, उसमें तो वर्तमान काल में जो हमारा शासन चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेक्युलेटिव के हिंदी में क्या कहें, सेक्युलर हा? नहीं नहीं नहीं, धर्म निरपेक्ष ये शब्द कहना चाहिए ना, धर्म को अपेक्षा नहीं करना, धर्म निरपेक्ष अधर्म सापेक्ष, हाँ अधर्म को बाकायदा सा अपेक्षा करेंगे, हाँ उसके लिए धार्मिक कृत्य कोई कोई भी अच्छा काम में रिलीजियस लिख दो गवर्नमेंट का, रिलीजियस एक्टिविटी फॉरगेट, हो नहीं सकता, हमारा भारत सरकार है धर्म को सपोर्ट सपोर्ट करेगा, धर्म सपोर्ट नहीं कर सकता, अधर्म काम हो हाँ वह सपोर्ट करना चाहिए, हाँ धर्म निरपेक्षता आड़ में क्या क्या कर बैठे हैं हम लोग। लेकिन तो कैसे वांछित संतान प्राप्त होंगे, श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध न करने का कई कारण बताए थे उनमें से एक कारण लगभग चार श्लोक उसमें बोले थे, बोले ये कारण सब है, उच्छन्न कुल धर्माणाम, ये तो धर्म नाश के खत्म कर दे, लुप्त पिंड दो क्रिया, ये बहुत बड़े उनका टेंशन था, क्योंकि ये लड़ाई के मैदान पर कोई स्त्रियां तो नहीं आते, आजकल पहले लेडी सोल्जर होते कि नहीं पता नहीं, शायद होते हैं मुझे लगता है, आजकल तो सब 50-50 है ना, तो तभी तो नहीं थे, कोई लड़ाई के मैदान पर कोई स्त्रियां नहीं थी, तो अर्जुन ने बोला भगवान के सामने, बोले देखिए अगर लड़ाई आप बोलते हैं तो लड़ो लड़ो करके हम लड़ेंगे मरेंगे, मरना तो है ही है, बचेंगे पता नहीं कितने लोग, मरना तो बहुत संख्या मरेंगे ना मरेंगे, मर जाएंगे जितने जवान और जितने पुरुष सब मर जाएंगे, बचेंगे संसार में कौन, स्त्रियां बूढ़े और बच्चे यही तो बच जाएंगे, बाकी तो सब बीच वाले से मरेंगे युद्ध में। तो बोलते हैं कि बाकी को चिंता छोड़ो, जब स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं किया जाए तो प्रदूषित हो जाने के बाद में तो क्या हो जाएगा, न संसार में नारकीय स्थिति पैदा हो जाएगा, नारकीय स्थिति पैदा हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में पढ़िए पहले लाइन में लिखते हैं कि संसार में शांति समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए एकांत आवश्यक है, उत्तम प्रजनन उत्तम पॉपुलेशन अच्छे कोटि के संतान संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता है, इसी के कारण ही इस समाज में शांति मैत्री जो समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हो सकता है। जब ये पॉपुलेशन ही खराब हो, बैड पॉपुलेशन हो, तब तो सब नरक बन जाएगा, बैड पॉपुलेशन कहां से होंगे, वहीं से कंटामिनेशन शुरू हो जाता है, वो कंटामिनेशन से। तो इसलिए कितने नियम धार्मिक नियम से बताया गया था, आप ठीक है संतान उत्पन्न करो भोगो, लेकिन नियम के अनुसार विथ रूल एंड रेगुलेशन, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन को मानते नहीं, ये तो मिथ है, मान करके मानते ही नहीं, सब उसको छोड़ करके आपने मनमानी करना चालू किए हैं, ये सब आधुनिक सभ्यता का ये सब एडवांसमेंट है, इतने एडवांस किए कि पशु तक पहन जाए, पशु से भी कंपटीशन करते हैं, हाँ तुम क्या नंगे हो, हम तेरे से ज्यादा, हाँ आश्चर्य लगता है, वस्त्र पहनना एक यहां कहा गया शील, शीलता मतलब भद्रता उत्तम आचरण, शील शब्द का अर्थ शीलता मतलब अच्छी तरह से बोलना, अच्छा तरह से व्यवहार करना, अच्छी तरह से वस्त्र आदि पहनना, ये एक शील स्वभाव है। आजकल पहले तो भारतीय जो भी अलग अलग देश के अलग अलग अनुसार उनके पोशाक होता था, भारतीय पोशाक जो भी था, लेकिन धीरे 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 हम बचपन में थे एक निकला जो पैंट, पहले तो कोट पैंट पहनते थे, लेकिन कोट पैंट के डिजाइन निकला उसको आजकल तो मैं देखता नहीं, बोल भेल बटम, मतलब बटम में इतने चौड़ा होगा, ऊपर से संकीर्ण होगा और नीचे नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते जाएगा, आप कोई देखें ऐसा, पुराना टेलर को पूछो बना देते, ये इतने लंबा होगा नीचे पता नहीं, और ऊपर से बिल्कुल छिपा होगा ऐसे, और धीरे धीरे क्या हुआ फिर बदल गया, युग जमाना बदला, वो नीचे संकीर्ण होने लगा ऊपर बड़ा होने लगा, अरे ठीक है चला, तब तो फाइन कपड़ा पहनते थे, अब पता नहीं युग धीरे धीरे एडवांसमेंट करने लगे, इतने एडवांस करने लगे, बोले पतला कपड़ा, बोले हम धोती कुर्ता पहनते हैं, धो के झाड़ के सुखा दे, घंटे भरे सूख गया, पवित्र हो गया, शुचि हो गया, पहन सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ये थर्ड क्लास कपड़े, मोटे मोटे कपड़े, एक बार मोटे मतलब बोरी से भी मोटा, जीन बोलते हैं ना, जीन कंपटीशन जीन आया, ये आधा इंच इंच के थिकनेस में कपड़ा, जिसको धोने का साहस ही नहीं कर सकते। साल में एक बार अगर छुट्टी लेकर सफाई करने के लिए विचार करूं, हाथ में तो निचोड़ ही नहीं सकता, मशीन भी फैल मारेगा, कितना डालेंगे सफाई कर ही नहीं सकते, मतलब सारे गंदगी के जमाट करके साल भर के उसी को पहने। ओ एडवांसमेंट, पशु तो गाय उनके वो टॉयलेट बाथरूम नहीं होता, कभी सो जाते हैं, बोले उनसे भी हम तो पहन कर गए एडवांसमेंट, देखिए मोटा थिकनेस पहने, तुम क्या करे, धो नहीं सकते उसको, धोने से सूखेगा भी नहीं, महीना लगेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे वस्त्र, अरे ये भी तो फिर भी ठीक था पशु की तरह, लेकिन आजकल तो हद हो गया, मैं कभी जाता हूं देखता हूं वो पहनते हैं, पता नहीं जान बूझ कर काट पीट रखे हैं कि दुकान से मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं दुकान पूरा यहां से धागा निकला हुआ है, छेद हुआ है, यहां से छेद, कोई बिना, अरे भी अद्भुत है, एक चीनी का चावल का बोरी भी स्टैंडर्ड लगता है देखने में, उससे भी गए बीते खराब, उसी को पहनकर उसको पहन करके अपने अपने आपको दी एडवांस्ड मानते हैं, उनको देखने से हमको शर्म लगता है, यही से हाथ करना पड़ता है, वो तो बोलते हैं हम फोटो खींचो, कितना एडवांस है, कंपटीशन किए हैं, पता नहीं इस दशे तक पहुंच चुके हैं यार, प्रगति करते करते आधुनिक जगत में, अब इस दशे पर अब इसी प्रकार में प्रगति के पीछे, एडवांसमेंट के पीछे, अपने नाम सुनाम के लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे अगर पड़ जाए, इसी के लिए सारे कर्म करे, धर्म को तो भूल गए, कर्म आदि करना और उसके फल प्राप्ति करने के लिए, इसी को कहते हैं जो सकाम कर्म आदि भोग इच्छा के लिए जो कर्म किया जाता है। बोलेंगे नहीं नहीं हम तो धर्म को मानते हैं, धर्म क्या है ना, जो अमेरिका आदि जो एडवांस कंट्री में जो लॉ पास किया गया वही हमारा धर्म है, दिस इज रिलीजन, उसी को मानेंगे। अच्छा ठीक है, भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, जो धर्म के आचरण करने वाले कहते हैं हम धर्म जानते हैं, हम धर्म को आचरण करते हैं, मतलब जो टीका लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, कभी कभी धोती पहन भी लेते हैं, अब कभी कभी नथी पोथी, मैंने थोड़ा बहुत धर्म बोलते हैं, हम धर्माचार्य धर्म आचरण करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, कर्मनिष्ठ है, धर्माचारी मध्य अधिक कर्मनिष्ठ, और कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, करोड़ों करोड़ों कर्मी कर्म में निष्ठा रखने वाले में एक समझदार ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों करोड़ ज्ञानी में सचमुच जो मुक्त प्राप्ति किया, मुक्त हो गया, इसी जंजाल से छूटा, वो श्रेष्ठ है, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, कहां है ऐसे भक्ति, इतने सुपरलेटिव डिग्री पर है वो, हम इसे चीप ले नहीं लेना चाहिए, है ना। तो यहां तक जैसे कहा गया कि अगर हम धार्मिक वृत्तियों के साथ, धर्म के नियम के साथ प्रजनन करें, संतान उत्पन्न करें, तो अच्छे संतान होंगे, और अच्छे संतान समाज का सर्वांगीण उन्नति समृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, नर्क बन जाएगा। तो अच्छी धार्मिक वृत्ति में संतान उत्पन्न करना सचमुच, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि पहले जमाने में था एक गर्भधान संस्कार, जो गृहस्थ होते हैं आदर्श, वो कम से कम पति पत्नी के प्रथम मिलन में एक संस्कार होता है, सबसे शुरुआत के संसार गर्भधान संस्कार होता है, जो गर्भधारण करने से पहले ये संस्कार को धारण करना पड़ता था, ये संस्कार फल तो भूल भाल गए, कभी भी है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहते हैं एटलीस्ट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड चैंट 50 राउंड सीच, कम से कम माला जपे, माला जपने से क्या होगा। हम ऐसे कहावत सुने हैं कि जब हिरण्यकश्यप का हेरिडेटर थे असुर वंश था, महाअसुर स्वयं सबसे टपोस्ट असुर था, तो उनके बेटा ऐसे भक्त कैसे बन गया, और साधारण भक्त नहीं है, है ना, नहीं जन्म सिद्ध भक्त बन गया कैसे। ऐसे कोई कहते हैं कि हिरण कश्यप जब हार गया, बोला विष्णु ढूंढ ढांड कर पता लगा, मर मार गया, पता नहीं है ही नहीं, चलो अभी तो ढूंढने के लिए मुझे तपोबल कर तपस्या करके आऊं। तपस्या करने के निकला था, मंदराचल में जाकर जब तपस्या करना शुरू किया तो देवता लोग आदि आदि आकर के उनको डिस्टर्ब करने के लिए, वो डरते थे तपस्या करके और ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, और तंग करेगा, तो डिस्टर्ब करने लगे। तो पास में के पेड़ में वो बेचारा बैठ करके अपना नमो ब्रह्मण्य देवाय अपना मंत्र पाठ कर रहा था, जब वो पेड़ में हरी 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 हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगे उनको, तो उसको डिस्टर्ब हुआ, बोला ये डिस्टर्ब कर रहे मुझे, है ना। नहीं वो डिस्टर्ब में वो इतना डिस्टर्ब हो गया हरि नाम से, वापस आ गया घर में, बोला होगा नहीं, वापस आ गया, फास्ट फेस तपस्या फेल मार गया उसका, हरि नाम के कारण डिस्टर्ब हो गया, हरि नाम के कारण इतने डिस्टर्ब हो गया, वापस आ गया घर में। तो उनके पाटरानी कयादेव पूछने लगे हो क्या गया, हाँ प्रभु आप वापस आ गए, आप तो प्रोजेक्ट में गए थे, फेलियर हो गया, क्या बात हो। बोला अरे क्या कहूँ, एकांत में रात्रि में अपनी पत्नी को अपने रहस्य बता रहे थे, बोले कि ये हरि नाम बता रहे कि ये डिस्टर्ब कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कोई सुना रहा, अब मैं क्या जप करूं, मेरा जप अब डिस्टर्ब हो गया हरि नाम के कारण। तो ये जो पत्नी को ये बात कह रहे थे उसी समय में कंसीव हुआ, तो भगवान के बात वो पत्नी की कहते कहते जो गर्भधारण हुआ, ये गर्भधान संस्कार का सबसे उत्तम कोटि के गर्भधान संस्कार हो गया ये मूड के कारण, तो उनके बेटा प्रह्लाद जैसे भक्त निकले, है ना। नहीं हाँ, तो केवल हरि नाम को डायरेक्टली नहीं, अनजान में किसी प्रकार से चर्चा अगर पति पत्नी कर बैठे, किसी भी बहाने से किसी प्रकार से, जब प्रह्लाद जैसे पुत्र बन सकता है, अगर सचमुच कोई जानबूझ करके नियम के अनुसार विधि विधान के साथ हरि के नाम ले श्रद्धा भक्ति के साथ, तो कैसा पुत्र उत्पन्न ना होगा, लेकिन कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, है ना। नहीं तो ये आवश्यकता है, सही भावना आवश्यकता है, सही भावना से पुत्र उत्पन्न हो नहीं हो पाता, तुरंत काम वासना आ जाते, कहां ये भावना सब चला जाता है पता नहीं, हिरण्यकशिपु की भावना आ गया, लेकिन हम लोग कितने कितने साधन भजन करके नहीं आता। यहां तक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का वचन है, उन्होंने कहते हैं वो पक्के ब्रह्मचारी थे, उनको पूछा गया आप शादी क्यों नहीं, बोले मैं शादी करने के लिए मना नहीं करता हूं, अगर मेरे अंदर विश्वास आ जाए कि मैं शादी करके एक विशुद्ध कृष्ण भक्त पुत्र पैदा करूं तो मैं एक क्या सैकड़ों शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन ये भरोसा अगर मेरे अंदर अभी नहीं है कि मैं एक विशुद्ध कृष्ण भक्त पुत्र पैदा कर सकूं, वो काम आ जाएगा, काम इतने खतरनाक है कि उन्हीं के कोटि के, अरे उन तो प्रभावित नहीं थे लेकिन ये उदाहरण देते थे, आपने उदाहरण देकर बताते हैं कि ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष भी अगर भोग वासना में आ जाते हैं तो ऐसे कंड बुद्धि हो जाता है, तब कहां भाव रहता है, तब भक्ति खत्म हो जाता है। तो भोग वासना कितने डेंजरस है, और उसको फिर पुण्य कर्म के साथ जुड़ करके भोगें, भले ही कितने अच्छे सुनने के लिए देखने के लिए बोलने के लिए, जसस करी मतलब ऐसा नहीं कि वो खराब बात है, सारे दुनिया के लोग वाह वाह करेंगे क्या काम करता है उनका, वो भी जैसे वो लड़का भी ऐसे, बेटी भी ऐसे, बेटा भी ऐसे, कितना दान धर्म दक्षिणा क्या, कितना नाम कमाया लाभ। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे दयावान है, कोई गरीब को बहुत बड़े दया का वृत्ति देखा, कुछ काम किया, तो इस व्यक्ति को, व्यक्ति के भावना को, उस कार्य को सब लोग संसार प्रशंसा करेंगे, करेंगे ही। तो ही पितृ मातृ जसस करी, पिता है चैतन्य प्राणी जीव और माता है बुद्धि, और जीव को और उसको बुद्धि को दोनों का जस बढ़ जाएगा अगर ऐसे, क्योंकि जो सद बुद्धि के अनुसार सद अंतकरण के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी इतना असत तो नहीं होगा। तो इसलिए ये सद बुद्धि के वृत्ति स्वरूप जो सब परिणाम निकला हुआ, ये जो विवेकादि पुत्र और लज्जा उत्कंठादि कन्याएं, ये सारे पिता के मां के नाम को रोशन करने वाले हैं, सब सारे संसार में उनको बढ़ाई करेंगे, लेकिन ये बढ़ाई से क्या मतलब है भाई, बढ़ाई से बढ़ाई रह जाएगा, उम्र ऐसे बीत जाएगा, देखते देखते चंडवेग और काल कन्या आकर टूट पड़ेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ। कितने बड़े बोलो मेरे बेटा तो प्रधानमंत्री बना, ये आईएएस भाई तो छोटे मोटे है ना, ये सब इंजीनियर फ्रेंड आई टी तो थर्ड क्लास है। हाँ, एक हमारे भक्त कहते हैं, बोलते हैं कि विचार करते हैं, विचार क्या बोला, मैं स्टूडेंट कैरियर में सबसे सक्सेस माना, मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, फिर उसी में अच्छा परसेंटेज लिया, फिर अच्छा नौकर बना है कि इंजीनियर बन गया। उस इंजीनियर को उसके ऊपर में आएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आएगा, इंजीनियर को उनके अंडर काम करेंगे। वो बेचारे आर्ट्स पढ़ कर आया, वो साइंस वाला फेल, आर्ट्स पढ़ करके आएगा, वो कलेक्टर बनकर आएगा, इंजीनियर उनके अंदर काम करे, ये काम कर, तो बेचारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो भी इंजीनियर बोले काम करेंगे अंडर में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट्स पढ़ कर आया, बोले ये तो मेरे से आर्ट्स से अच्छा है, आर्ट्स वाला उन्हें बढ़ा, तो उसके ऊपर कॉमर्स व्यापारी होंगे, वो बोलेंगे पैसा देकर कलेक्टर वो अपना हाथ में रखें, बोले वो तो हमारे से बड़े हैं। साइंस से इंजीनियरिंग से बढ़कर के साइंस, साइंस से बढ़कर आर्ट्स, आर्ट्स से बढ़कर कॉमर्स, कॉमर्स से बढ़कर के नीरस और उठेंगे जो बिल्कुल अनपढ़ है गवार, वो बनेंगे नेता, वो बनेंगे नेता, और नेता के अंदर सारे वो बोलेंगे हम ही सारे व्यापारी, सारे कलेक्टर, सारे इंजीनियर, सारे तो उनके चमचा बनेंगे, ये तो वीरा नीरस अनपढ़ है कोरा, बोलेंगे ये तो बेकार है, वो तो उनसे तो इसी से वो देख समझ कर बोले भी करना पड़े नहीं अच्छा है ना, नहीं वो उनके अंडर में सारे काम करें, सारे काम करें। तो इस प्रकार हम जिसको जीवन के श्रेय श्रेष्ठ करके मान बैठते हैं, उसको विचार करके देखे, वो कुछ नहीं है, ये तो छोटे मोटे डिग्री प्राप्त किए हैं, जो सबसे बड़ी हाई पोटेंट पोजिशन, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाए, बन जाने के बाद अभी बहुत बड़े राष्ट्रपति बने थे, कितने सारे उनके पदवी था, क्या था, गए ना, राम नाम तो सत्य होगा ही, बीत गए ना, जरा और व्याधि और मृत्यु तो है ही है, टाला नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं जरा व्याधि की तो टाल ही देंगे। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल हो गया ना, वेदांत है, जरा व्याधि की तो हम टेक केयर कर लेंगे। हाँ, लेकिन कर पाते हैं, अरे बाप रे बाप, वो काल कन्या और चंड वेग अभी आगे आने वाला है, उनके अटैक को कोई नहीं कर पाए, कितने चिंता रहते हैं। इसलिए नीति शास्त्र गण कहते हैं कि ये संसार में कोई सचमुच निर्भय होना चाहते हैं, बोलते एक एक प्राप्ति के बताते हैं, बोले कोई बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, विद्या बहुत अच्छा ज्ञानी है, ज्ञाने खल भयम, बोलते कोई दूसरा आ गया, आकर एक कंपटीशन करेगा, डर रहता है, ओ मेरे से ज्यादा है इतने, इतने हमेशा डर डरते हैं, कौन आया, वो आ गया तो मेरा तो गया चौपट, मेरा पोजीशन गया, वो आ गया, कोई ना कोई उनसे बड़े आ जाएंगे, वो कोई दुष्ट आ जाएगा, हमेशा भयभीत रहते हैं। ज्ञानी धनी, जिनके पास धन प्रचुर है, उनका तो डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डर उनका है धन, वो तो बेचारे धन प्रयास करते करते मर गए, धन लाने के लिए लाते समय में डर डर करके लाएंगे, घर में रखे डर डर कर, रात को सो भी नहीं पाए, खस खस होने से खड़े हो जाएंगे, इतने सिक्योरिटी, पुलिस, गदरेज, अलमीरा, कुत्ता, क्या क्या रखकर भी कितने भय है ना, नहीं इतने भय में रखेंगे और फिर भी चोरी हो गया तो हटफेल हो जाएगा, इतने भयभीत धन है, चोर भयं, अरे आजकल चोर नहीं, दीन दोपहर में गवर्नमेंट भय है, सरकार ले जाता है, उसको डर डर मारे छिपाना पड़ता है, ब्लैक व्हाइट ये सब काहे को है, सरकार को भय है धन के कारण, धन धन का तो दो दो भय रहता है, कि चोर भय है, एक सरकार भय, ये ज्ञानी गए, धनी गए, जो मानी, जो बहुत मान, बहुत सम्मान मान है, इतने डरते हैं कोई मेरा अपमान ना हो जाए, माय गॉड, इतने पोजीशन में इतने बचाना चाहते हैं, मान गया तो बोलते हैं कि मृत्यु से ही बढ़कर है, मृत्यु से ही बढ़कर है, अकीर्ति कर्म, भगवान में अर्जुन कहते हैं कीर्ति जो है ऐसा कि मरने से भी ज्यादा, मरणार्दिति इच्छते, मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, ये मान की सम्मानीय व्यक्ति के असम्मान हो जाना, तो मान वालों का हमेशा भय रहता है। तो धनी, मानी, ज्ञानी ये सब गए, ओ बोले सुंदर है, हम हीरो हैं, सुंदरता को तो हमेशा उनका ड्रेसिंग टेबल देखना, 1008 आइटम फिर भी कमी पड़े, इतने प्रसाधान लगे रखेंगे और कई आदमी लगे रखेंगे, प्लास्टिक की सर्जरी क्या क्या करते रहेंगे अपने रूप को बचाने के लिए, कहा है कि बचे भाई हो, बहुत भयभीत रहते हैं कि उनका कुरूप ना हो जाए, उनका सुंदर रूप कुरूप ना हो जाए, रूपवान के भय, जरा भय, व्याधि, बुढ़ापा, सब लोग सड़ जाएगा, सब कंडम हो जाएगा, उसको डरते हैं। तो धनी, ज्ञानी, म्यानी और ओके रूपवान गए और बलवान, बलवान के भय क्या है हो कंपटीटर को ना आ जाए, कितने बड़े बलवान क्यों ना हो उनके टक्कर वाले तो कोई है। गजराज समझ रहा था ये संपूर्ण संसार में मैं ही हूं सबसे बड़ा बलवान, हाथी था शरीर भी इसने बड़ा हाथी जैसा पर्वत जैसा हाथी था और हजारों हाथनी उनके पीछे चल रहे थे, शरीर से मद चू रहा था वो, जब जंगल में चल रहा था जंगल का राजा सिंह आदि डर के मरे भाग जाते, इतनी बलशाली था, पृथ्वी दुलक रहा था, इतने इतने बलवान था। लेकिन भगवान कितने भी बलवान हो उनके काट रखे हैं, पानी के अंदर वाटर पास टाइम करने गया अपने पत्नियों के साथ, बताओ वहीं पे फंस गया, वो कोई हाथी फंसाता भले, एक मगरमच्छ पकड़ लिया उसको पैर को, पैर पकड़ पर के उसको मार दिया, भाई हो गले पकड़ता भाई और कुछ पता, पैर पकड़ के, पैर पकड़ पर के हटा दिया उसको ऐसे उसको वो केयर नहीं कर रहा था, वो केयर तू क्या मेरा करेगा, इतने बलवान है। लेकिन कितने बलवान रहा कुछ नहीं कर पाया, हजारों परिवार वर्ग थे, बहुत फोन फान किया होगा, बहुत सारे मंत्री संतरी उनका पहचान थे, सारे लगा लिया कुछ नहीं कर पाए, दो चार साल पांच दस साल बीस साल तक हेल्प किए, सब छोड़ छाड़ कर गए अपना चले गए। बोलते हजारों साल तक लड़ा उन्होंने अपने बल के अनुसार, अंततः गया, मरते दम में भगवान याद आए। तो कितने भी बलवान हो उनका भी भय भी थे, भय रहता है। बाकी कौन संसार में ज्ञानी म्यानी धनी रूपवान बलवान और ज्ञानवान सब तो बोल दी, और क्या बाकी रह गए, जितने भी कोटि प्रकार के लोग हैं जितने प्रकार के हैं सब भयभीत थे, कोई भय से नहीं बचा, केवल एक कोटि के व्यक्ति भय से बच जाते हैं, उनको भय की परवाह नहीं, वो क्या जानते हैं, वैराग्यमेव अभयं, जो वैरागी है उनको किसका भय, भाई है नहीं उनको भय नहीं ना, तो किसलिए विरक्तता अनासक्तता, ये आना ये प्रभुपाद जी ने बोलते हैं 50 साल के बाद तो नियम के अनुसार सबको संन्यास लेना चाहिए, वानप्रस्थ से लेकर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सनक में आकर लेना ऐसे नहीं है, केवल संन्यास ले लेने से दुख प्राप्त होगा इसे भी कोई काम नहीं बन जाएगा। तो संन्यास लेने का मतलब इंद्रिय को संयम करना, जब इंद्रिय संयम नहीं कर पाए, इंद्रिय भोग के साथ कुछ भी कर ले वो सफलता नहीं हो सकता, दुख प्राप्त होगा, तो कुछ भी कर ले। तो इसलिए हमारा पूर्ण प्रयास रहना चाहिए विरक्त होने के लिए, तो विरक्त हो जाने से सुखी हो जाएंगे नहीं, विरक्त मतलब छोड़ना, त्यागना, त्याग किस लिए करें वो जानना चाहिए, केवल छोड़ देने से नहीं, छोड़ करके पकड़ना पड़ेगा, घर में झगड़ा हो गया छूट कर आ गया तो सुखी हो गए क्या, भाई सब नहीं, तो विरक्त से वैराग्य सुख नहीं होता, इसलिए वैराग्य अभय नहीं कहा गया, वैराग्य इसीलिए हुआ क्या, विराग संसार से होकर राग होना चाहिए, विशेष राग ही वैराग्य, ये विजुक्त राग नहीं है, विशेष राग किसके साथ होना चाहिए, भगवान कृष्ण चरण में जिसका विशेष राग हो गया एकमात्र वही अभय है, वही अभय शरणारविंद है ना नहीं? तो जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी भी प्रकार से भगवान के श्री चरण में अटैचमेंट हो जाए तब पूरे सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं, किसी प्रकार के नहीं जो उनको भय दे दे सके ना, किसी प्रकार से भय नहीं हो सकता उसको, कृष्ण चरण में विशेष राग हो जाए तो केवल विरक्त हो जाने से फिर भी डर रहेगा। बड़े बड़े विरक्ति दे फल डाउन ना हो जाए डरते नहीं, जिसका कृष्ण चरण में आसक्त है उनका थोड़ा किसी को भय नहीं है, वो पतित होकर भी उनको भय नहीं, भगवान गारंटी देते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, बोले मेरा मत है, कौन कह सकता मेरा मत को पूछ करके, मैं बोलता हूं दुराचारी नहीं सुदुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगा तो साधु मानना पड़ेगा उसको, ये मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं तो किसी भी प्रकार से भगवत भजन करना भगवत भक्ति करना यही केवल सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है, नहीं तो ये चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे वर्णाश्रम पालन कचे रौरवे पड़ी मजे, ये चार वर्ण को ठीक ठीक से पालन करके वर्णाश्रम चतुराश्रमी रौरव नरक में जाएंगे अगर कृष्ण भजन नहीं करेंगे। तो इसलिए धर्म इच्छा, अर्थ इच्छा, काम इच्छा, मुक्ति इच्छा को छोड़ करके केवल परम पुरुषार्थ भगवान श्री चरण में आसक्ति हो जाना, और आसक्ति भक्ति के द्वारा ही होता है। भक्ति तो है केवल अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, यही भक्ति है। इसी भाव को जानना, इस भाव के अनुसार काम करना, उसको प्राप्त होना, इसी को शिक्षा देने के लिए ही ये नाना प्रकार के उपाय से सिखाते हैं। ये पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में इतने पुत्र हुए, इतने पुत्री हुए, और पुत्र पुत्री अपने पिता माता का नाम खूब रोशन किए, खूब गुण उनका है, खूब सौंदर्य है, उदारता है, शीलता है, इतने सारे दिखा गया, लेकिन फिर भी भक्ति ना हो तो सारे शील गुण उदार्य किसी काम के नहीं है। शीलता, शीलता के लिए एक नीति शास्त्र का नियम याद आता है मेरा, पंडित जी कहते हैं अश्लीलता मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यह माता पिता के बात आया ना, शील के बात आया। शील का होता है उत्तम कोटि के आचरण, सभ्यता, उसको शील कहते हैं। श्री राम शील स्वभाव, भगवान राम के स्वभाव शील संपन्न है, शीलता अति उत्तम कोटि के भद्र व्यवहार है, राम भद्र इसलिए कहा गया, भद्रता। तो जो अभद्रता अश्लीलता ये कैसे किसके अंदर आ जाता है, उसका दाई कौन है? कोई लड़का बिल्कुल अनसिविलाइज्ड अभद्र हुआ, कोई मैनर्स नहीं उसका, तो उसके लिए कौन दाई? बोलते हैं लड़का चाणक्य पंडित, वो लड़का दाई नहीं, फिर कौन दाई? ना अश्लीलता मातृदोषेण, उसके लिए ए बेटा का अभद्रता के कारण है उसका माँ, अश्लीलता मातृदोषेण। माता जी को भले कड़क लगे लेकिन जो नीति में लिखा है मैं बोलता हूँ, अश्लीलता मातृदोषेण पितृदोष, पिता का भी दोष है ना, केवल मेरा दोष सर है ना, उनका भी दोष है। उनका दोष क्या है? न मूर्खता। अगर लड़का मूर्ख निकला तो लड़का का दोष नहीं, किसका दोष है? पिता का दोष है। पर माता पिता का दोष सर, बेटा का कुछ दोष नहीं है? बोले उनका भी दोष है। क्या दोष है? ना अगर दरिद्र हुआ उसके लिए माँ दोषी नहीं कि पिता दोषी नहीं, दरिद्रता स्वदोष है ना, उसके लिए खुद ही दोषी है। तो ये तीन चीज को, तीन ही को दोषी ठहराया गया नीति शास्त्र में, है ना? नहीं तो अपना अपना दोष को मान करके जान कर काम करना चाहिए। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए जी। हाँ 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 जी हाँ हाँ आप पूरा नहीं सुने शायद। भक्ति के संज्ञा मैंने तीन बार बोला है ना, भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, तीन तीन बार बोला उसको, है ना? हाँ, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति है, और अन्य अभिलाषा ज्ञान कर्म आदि भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा करके प्राप्त किया जाए जी, जी भक्ति का अर्थ ही सेवा तो है, और क्या? सेवा भाव से ही होता है ना? हाँ, भाव के बिना सेवा नहीं होता। सत्कर्म से, सेवा कर्म से प्राप्त किया जा सकता है।